नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ द अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारता के सीजन 2 में। दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड एक ऐसे कपल पे है जिनके बारे में आप लोगों को शायद से पता होगा, क्योंकि इनकी लव स्टोरी बहुत फेमस है और इनसे रिलेटेड बहुत सारे पोएम्स भी लिखे गए हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस किए गए हैं इनकी लव स्टोरी पे। तो हमारा आज का टाइटल है नल और दमयंती की अजीब दास्तां। दोस्तों, इससे पहले कि आपको नल और दमयंती से रिलेटेड मैं कहानी बताऊं, ये बताना थोड़ा ज़रूरी है कि वो महाभारत से कैसे रिलेटेड हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी बैक स्टोरी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो आप लोग सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर किस तरह से जुए में अपना सब कुछ हार जाते हैं, अपने भाइयों को, बीवी को, अपने राजपाट को, और उन्हें बदले में एज पनिशमेंट उन्हें जंगल भेज दिया जाता है। अब जंगल में युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ हैं, तो उस टाइम पे ऐसा था कि जब वनवास में ये राजकुमार लोग अगर जाते थे तो वो अकेले नहीं रहते थे, उनके साथ में ऋषि मुनि लोग रहते थे, कोई ना कोई उनके साथ में हमेशा से रहता ही था। तो अब युधिष्ठिर इस बात से अंदर ही अंदर बहुत परेशान है कि उनके कारण सब लोग जंगल में आ चुके हैं, उन्होंने सब कुछ दाव पे लगा दिया, और इस बात को उन्हें गिल्ट हो रहा है अंदर से बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम एक महर्षि थे जिनका नाम था बृहदश्व। अब बृहदश्व ये चीज़ देखते हैं युधिष्ठिर में और वो समझ जाते हैं कि ये अंदर ही अंदर जो गिल्ट है युधिष्ठिर को, वो खाए जा रहा है। उन्हें पता था कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर गिल्ट आपको अंदर से खोखला कर रहा है तो फिर आप आगे का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे और इसी चीज़ में आप डूबते चले जाओगे। तो जब वो देखते हैं कि युधिष्ठिर इस गिल्ट में है, तब वो युधिष्ठिर को नल और दमयंती की कहानी सुनाते हैं, ताकि उस कहानी से इनको थोड़ा सा मॉरली इनको सपोर्ट मिले, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले। तो दोस्तों, अब जाते हैं नल और दमयंती के कहानी की ओर। तो ये कहानी बहुत पहले की है, महाभारत से पहले की कहानी है। निषाद नाम का एक राज्य था। अब वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था वीरसेन, और वीरसेन को एक लड़का था जिसका नाम था नल। अब नल के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उस टाइम पे जितने भी नौजवान थे, जितने भी राजकुमार थे या आप कह लो राजा थे, उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत नल थे। पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत नल को माना जाता था, मतलब राजकुमार या फिर इन कैटेगरीज में। और इसके अलावा नल बहुत अच्छे घुड़सवार थे, मतलब कहा जाता है कि उनसे अच्छा रथ कोई नहीं चला सकता था, उनसे अच्छा और तेज़ रथ कोई नहीं चला पाता था उस टाइम पे। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि उनका खाना बनाने का स्किल। नल के बारे में कहते हैं कि वो अंधेरे में बिना लाइट जलाए 12 अलग अलग तरह के पकवान बना सकते थे। और आज की डेट में भी अगर कोई लगातार बहुत ही स्वादिष्ट या फिर अच्छा खाना बनाता है तो उसे नल भागम करके एक टाइटल है वो दिया जाता है। और जो खाने की इंडस्ट्री है उसमें मानते हैं कि जो रेसिपी की पहली किताब है वो सबसे पहला जो लिखने वाला इंसान है वो है नल। तो ये कुछ थोड़ी सी स्टोरी नल के बारे में जो मैंने आपको बताई है। अब विदर्भ के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, और भीष्मक की जो बेटी थी उसका नाम था दमयंती। तो जिस तरह से नल के बारे में चारों ओर चर्चा था कि वो राजकुमारों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और योद्धा राजकुमार हैं, उसी तरीके से दमयंती की खूबसूरती के बारे में चर्चा सारे लोक में थे, मतलब यहाँ तक कि देवता भी दमयंती से शादी करना चाहते थे, वो इतनी खूबसूरत थी। अब इधर दमयंती जो है वो बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी की जो चिंता है जैसे हर एक माँ बाप को होता ही है, तो उसी तरीके से उसकी माँ को ये चाहत थी कि उसकी बेटी की शादी जो है एक किसी देवता से हो, क्योंकि बेटी इतनी खूबसूरत है और तीनों लोक में चर्चे हैं, तो फिर नॉर्मल इंसान से ना होके एक देवता से शादी हो। तो उन्होंने क्या किया कि एक हंस के ज़रिए इंद्र के पास इन्विटेशन उन्होंने भेजा कि जाओ तुम इनवाइट करके आओ शादी के लिए। अब ये हंस उड़ता है भाई साहब और जाते हैं इंद्रलोक की ओर, अपना उड़ते हुए पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बीच रास्ते में क्या होता है कि वो एक आंधी तूफान में, भयानक आंधी तूफान में फंस जाते हैं और जिसके कारण वो वहाँ से पहुँच नहीं पाते हैं इंद्रलोक, और बीच में ही वो गिर जाते हैं, मतलब थोड़ा चोट लग जाता है, आंधी तूफान में फंस के चोट लग के वो गिर जाते हैं। अब ये जहाँ गिरते हैं वो गनीमत से निषाद राज्य होता है, और इनको नल जो है वो उठा के लाते हैं और वही इसका पूरा देखभाल करके इसको ठीक करते हैं। अब ये जो हंस है वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है नल के बिहेवियर से कि जान भी बचाया, देखभाल किया, उसको लगा कि दमयंती के लिए इंद्र से ज़्यादा अच्छा सूटेबल जो पति है वो नल होगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो इंद्र को इनविटेशन नहीं देके वो नल को इनविटेशन दे देता है, और वो वापस आके दमयंती से नल के बारे में खूब बड़ाई करता है कि ऐसा है, अच्छा है, मेरी जान बचाइए। तो ऑटोमेटिकली दमयंती के मन में नल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो गया था। और इसके अलावा भी क्या होता था कि जो भी लोग ट्रैवल करते थे, अगर जैसे जो निषाद राज्य से विदर्भ आते थे, उनके मुंह से भी ये कई बार सुन चुकी थी कि वहाँ के जो राजकुमार हैं, जो नल नाम के राजकुमार हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं। तो ये सब सुन सुन के मन में नल के लिए प्यार आना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो माइंड मेकअप कर चुकी होती है कि मैं नल से ही शादी करूँगी और मैं उसे ही अपना पति मान चुकी हूँ। तो ये एक वर्जन है जहाँ पे कि ये हंस के द्वारा दमयंती को नल के बारे में पता चलता है। और एक बात बताना मैं भूल गया कि जब हंस ठीक हो जाता है नल की देखभाल से, तो वो नल को भी दमयंती के बारे में बता देता है। तो इससे होता क्या है कि दोनों एक दूसरे को बिना देखे लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड बातें दोनों को पता चल चुकी होती है, और दोनों के मन में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर या प्यार आना शुरू हो चुका होता है। किसी वर्जन में ये भी कहा गया है कि नल जो है हंसों को बात करते हुए सुन लेते हैं दमयंती के खूबसूरती के बारे में, तो फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाके इनके बारे में दमयंती को बताए। तो कुछ कुछ वर्जन्स थोड़े से अलग हैं, बट बेसिकली ऐसा होता है कि शादी के पहले दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका होता है। अब ये जो इनविटेशन है स्वयंवर का, ये सारे राज्य को जाता है। राजा ने बेटी की शादी के लिए सब राजकुमार लोगों को बुलाया है, देवताओं को भी भेजा गया है। तो जब इंद्र अपने दोस्तों के साथ, सूर्यदेव हो गए, वरुण देव हो गए, वायुदेव हो गए, इनके साथ ऊपर से नीचे आ रहे हैं शादी में जाने के लिए, इन लोगों को रास्ते में नल दिखते हैं। अब नल इतने, मतलब इतने अट्रैक्टिव थे, इतने खूबसूरत थे कि इंद्र को लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब ऐसा खूबसूरत, मतलब योद्धा दिख रहा है, और इसके सामने हमें तो पसंद नहीं करेगी दमयंती। तो फिर वो लोग आपस में, जितने देवता लोग रहते हैं, आपस में एक डिस्कशन करते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं नल के पास, नल के सामने आते हैं। अब नल जितना भी हो एक इंसान है, इंद्रदेव आ जाएंगे सामने तो फिर आपको तो थोड़ा सा झुक के रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है। तो इंद्र उनसे कहते हैं कि तुम हमारे दूत बन जाओ और तुम जाके हमारे तरफ से, हमारे बिहाफ से जाके तुम दमयंती से कहो कि सारे देव उससे शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है, बट उसे जो पसंद है वो उससे शादी कर सकती है। अब नल कहते हैं कि भाई मैं खुद ही कंटेंडर हूं वहां पे जाने का, मुझे भी वहां पार्टिसिपेट करना है, ये तो गलत होगा, अगर मैं आपका दूत बन के गया तो फिर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। तो किसी तरीके से जितने भी देव लोग हैं इधर उधर बातें करके उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं तुम जाओ दूत बन के और हमारा तुम जाके काम करो। तो नल क्या करते हैं कि शादी के दो तीन दिन पहले ही वो दूत बन के पहुँच चुके हैं दमयंती के पास। दमयंती के सामने में बताते हैं कि ये सीन है कि मुझे ऐसा दूत बना के भेजा है, अब देवता है, मैं मना नहीं कर पाता हूँ। तो दमयंती लेकिन बहुत स्ट्रांग हेडेड लड़की है, वो बोलती है कि नहीं, मैंने अपने मन में आपको पति मान लिया है तो मैं आप ही से शादी करूँगी। आप आ जाए हो दूत बन के तो मैं रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करूँगी, आप स्वयंवर वाले दिन अपने असली रूप में आना, मतलब नल की, राजा नल बन के आना या राजकुमार नल बन के आना। तो ये वापस चले जाते हैं और वापस जाके इनको बोल देते हैं आंसर जो भी है। तो अब फाइनल दिन आता है जिस दिन स्वयंवर है, सारे राजकुमार सारे सब कोई सज धज के बैठे हुए हैं। अब इधर दमयंती एंटर करती है माला लेके, अब देखती है एक लाइन से कि भाई नल कहाँ है, नल कहाँ है, उनको देखने के लिए। तो उनको दिखता क्या है की लाइन में 5-6 नल खड़े हैं, मतलब 5-6 लोग हैं जिनकी शक्ल एकदम डिट्टो डिट्टो एकदम नल की तरह है। अभी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई मैं कैसे पहचानूं इसमें, किसको माला डाल दूं, कहीं गलत किसी इंसान को डाल दिया तो दमयंती विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी, हरि हरि को हरिदेव जो है उनको बहुत ये मानती थी, तो उनको ये आँख बंद करके रिक्वेस्ट करती है कि यार बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंस गई हूँ, हेल्प करो आप थोड़ा। तो कुछ उनके दिमाग में आता है और ये जाके माला पहना देती है एक नल को। बाद में रिवील होता है कि भाई वही असली नल है, बाकी जो नल थे वो लोग सब देवता लोग थे, जो इंद्र है उन लोगों ने रूप बदल दिया था, लेकिन जब उन्हें भी पता चला कि अच्छा रियल वाले को ही माला पहनाया है तो सब अपने असली असली रूप में आ जाते हैं और फिर कपिल को इन लोग सब आशीर्वाद देके वापस जाने लगते हैं। अब ये नल पूछते हैं कि भाई तुम्हें पता कैसे चला कि मैं ही असली नल हूँ, इतने सारे सेम मेरे ही चेहरे वाले लोग खड़े थे। तो दमयंती कहती है कि मैं ना आपके आँखों में देख रही थी, जितने भी नल थे मैंने सबकी आँखों में देखा, लेकिन प्यार वाली जो फीलिंग है वो सिर्फ आपकी आंखों में दिखा, बाकी जितने भी नल थे उनकी आंखों में पाने वाली फीलिंग थी कि मुझे सिर्फ पाना है वैसा। तो एक तो ये रीज़न है, दूसरा रीज़न है कि देवता कभी इम्परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, इंसान हो सकता है, कुछ ना कुछ त्रुटि कुछ ना कुछ गलतियां इंसान की बनावट में रहेगा ही रहेगा, लेकिन चूंकि वो भगवान थे उन्होंने आपका रूप लिया था, बट भगवान होने के कारण वो इतने परफेक्ट थे कि उनमें कुछ गलतियां ही नहीं थी। तो मुझे वो समझ में आ गया था कि ये जो है इतना परफेक्ट इंसान नहीं हो सकता है, और फिर मैंने आपको इसमें से पहचान लिया। अब शादी हो गई, सबने आशीर्वाद दे दिया, देवता उवता सब रिटर्न होने लगे। तो जब ये देवता लोग रिटर्न हो रहे हैं, रास्ते में इन्हें कालीदेव मिलते हैं। कालीदेव है, कालीदेव भी कहते हैं हमें, कालीदेव बेसिकली उनको माना जाता है कि कली युग में कालीदेव का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कालीदेव असल में थोड़ा लेट हो चुके थे, तो उन लोगों से पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है और दमयंती ने नल को पसंद कर लिया है, तो हम लोग आशीर्वाद दे के हम लोग वापस जा रहे हैं, जबकि अंदर से बुरा सबको लगा है देवताओं को। तो अब कालीदेव कहते हैं कि ये तो इंसल्ट है अपनी कम्युनिटी पे, क्योंकि अगर जहाँ देवता भी गए हैं शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पे आप देवता को अवॉइड करके उसको इग्नोर करके आप नॉर्मल इंसान से शादी कर रहे हो, तो मतलब तो ये देवताओं की मतलब ये अनादर है, डिसरेस्पेक्ट कर दिया है, तो इसके लिए उन्हें भुगतना पड़ेगा और इसका बदला लूँगा मैं इस इंसल्ट का जो देवताओं की हुई है। ऐसा बोल के वो नल और दमयंती के राज्य में जाना चाहते हैं। अब देवता उवता लोग जो भी हैं उन लोग अपना रिटर्न हो गए अपना। अब इधर जो कालीदेव है उनको मौका चाहिए कि किसी तरीके से, अब कालीदेव जो हैं उनका काम सिर्फ ये हो सकता है कि किसी तरीके से आपके धर्म को भ्रष्ट किया जाए या फिर आपके लिए आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाए, मतलब आप अधर्म वाले काम करने लग जाओ, सही गलत का आपको पता नहीं चलेगा डेफिनेशन क्या है नहीं है, बेसिकली वैसा वाला। तो नल अपनी वाइफ के साथ आ चुके हैं अपने राज्य में, निषाद राज्य में, और लोग दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। इधर कालीदेव जो हैं वो उसी राज्य में हैं, लेकिन उनको टोटल 12 साल लगता है नल में एक गलती ढूंढने में, जिसके कारण कि वो एंटर कर पाए नल के बॉडी में या फिर नल के दिमाग के साथ खेल पाए, क्योंकि वो इतने मतलब राजकुमार तो थे ही या फिर अच्छे इंसान भी थे और धर्म को मानने वाले भी इंसान थे। तो टोटल 12 साल लगता है कालीदेव को उसमें इम्प्योरिटी ढूंढने में, अगर कहूँ मैं तो। वो भी कैसे कि शाम को नल को पूजा करने जाना था, देवी का या किसी देवता का पूजा करने जाना था, लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपना पैर नहीं धोते हैं, जिसके कारण वो एक अधर्म के पात्र हो जाते हैं। मतलब कि भाई आपने गलती कर दी, अभी शुद्ध होकर तो पूजा उजा करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं बार बार हाथ पैर धो के करना चाहिए। तो अब इस जगह पे कालीदेव को मौका मिल जाता है, तो अब वो दिमाग में घुस जाते हैं, इसके इसके बॉडी में घुस जाते हैं और इसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। नल के बारे में एक जो बात है अपार्ट फ्रॉम कि वो रथ चलाते हैं बहुत अच्छा, या खाना बनाते हैं, उनको जुआ खेलने का भी बहुत शौक था। और जब दिमाग भ्रष्ट हो जाए तो फिर आपको यही सारी आदतें जो है आपको डुबा देती हैं। तो ये अपने भाई के साथ जुआ खेलने बैठता है। अब जुए में क्या होता है, धीरे 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 युधिष्ठिर की तरह ये भी सब कुछ लगाना शुरू कर देता है। ये अपना राजपाट सब कुछ हार चुका होता है। तो जब ये राजपाट हार चुका है, जब कंगाल हो जाता है, तो ये कालीदेव जो है वो अपना प्रकोप इसके भाई के भी दिमाग में रख चला देते हैं। अब उसका भाई इनको कहता है कि तुम सब कुछ हार चुके हो, तुम्हारा अब यहाँ कुछ नहीं है, एक काम करो, तुम लोग मेरा राज्य छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, तुम लोग जंगल चले जाओ। और जितने भी लोग थे उस राज्य में, सब में ये जाके ढिढोरा पिटवाता है कि अगर किसी ने भी इनकी मदद की तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। अब नल अपनी वाइफ के साथ में जंगल की ओर निकल जाता है बेचारा। वो वाइफ से कहता है कि आप अपने मायके चले जाओ, अपने पिता के पास रहो, क्योंकि इनके बच्चे भी थे, दो बच्चे थे जिनको इन्होंने पहले ही भेज दिया था वहाँ पे। और नल उनसे कह रहे थे कि दमयंती आप भी चले जाओ और जो भी है ये मैं देख लूँगा। लेकिन अब दमयंती ने इतने प्यार से, इतने लोगों का स्ट्रगल करके, दिमाग लगा के नल से शादी की थी, क्योंकि वो प्यार करती थी, तो वो तो नहीं छोड़ के जाती। तो बोलती है नहीं, मैं आपके साथ में ही रहूँगी, चाहे जैसा भी जो भी सिचुएशन आ गया है। अब कहते हैं कि नल जो है सिंगल एक कपड़ा लेके अपने बदन पे वो जंगल में चले जाते हैं। उसमें भी वो जब जंगल पहुँचते हैं तो किसी चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं उस कपड़े से, तो वो चिड़िया कपड़ा लेके उड़ जाता है, तो उसके बदन में कपड़ा ही नहीं रहता है। तो दमयंती अपने कपड़े में से फाड़ के उसको देती है कि तुम आधा अपना बदन ढक लो। अब कालीदेव जो है वो अभी भी अंदर है, अब उन अभी भी दिमाग में उनके साथ वो खेल रहा है सारी चीज़ें, सारी इनको और बुरा समय दिखाने के लिए। अब नल जो है उनको लगता है कि यार ये तो मेरे साथ रहेगी तो इसको भी तकलीफ होगी, जंगल में मैं कहाँ जाऊँ, क्या खिलाऊँ नहीं खिलाऊँ, एक काम करता हूँ मैं उठ के सुबह होने से पहले ही चला जाता हूँ। सुबह उठेगी, ढूंढेगी, देखेगी नहीं है, थोड़ा सा रोएगी, फिर वो वापस अपने पिता के यहाँ चली जाएगी। और ये प्लानिंग करके ये क्या करते हैं कि आधी रात में ही बीवी को छोड़ के, दमयंती को छोड़ के ये आगे चले जाते हैं जंगल में। कहते हैं ना कि आपका जो भी एक्शन है, जो भी आप काम कर रहे हो, आपके दिमाग से है, और आपका दिमाग ही अगर भ्रष्ट हो चुका है तो फिर आप कदम भी वैसा ही उठाओगे। तो खैर अभी ये अपनी बीवी को छोड़ के आगे जंगल की ओर जा चुके हैं। इधर दमयंती सुबह उठती है, देखती है पति नहीं है आसपास में, घबरा जाती है, मतलब कोई भी घबराएगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, आवाज़ देती है, रोने रोने लग जाती है, बहुत जगह ढूंढने की भी कोशिश करती है, कुछ कुछ रास्ते में जाती है, जो रास्ते में मिलता है सबसे पूछती है, जैसे ऋषि मुनि मिल गया, सांप मिल गया, राक्षस मिल गया, या फिर जो भी जंगल के जीव है, जो भी मिलते हैं सबसे पूछती है, लेकिन कोई बता नहीं पाता है नल को कहीं देखा है कि नहीं देखा है। तो किसी तरीके से ये वहाँ से जंगल से निकल के एक छेदी नाम का एक राज्य था, वहाँ पे इसकी आंटी वहाँ की रानी थी, तो ये छेदी राज्य पहुँचती है। अब वहाँ पहुँचने के बाद अपने ये आंटी को खबर भिजवाती है कि ये रानी की सेवा में काम करना चाहती है, बट नौकरानी नहीं बनना चाहती है। तो जो रानी है उनको पता चल जाता है कि कुछ ऐसा ही रॉयल ब्लड होगा, या फिर ऐसा ना कोई राजा खानदान से होगी, तभी ये उनके अंदर है, क्योंकि अभी तक उन्होंने देखा नहीं था। तो बाद में जब वो आती है, आमने सामने मिलते हैं, तो फिर वो कुछ दिन वहाँ रहती है और फिर छेदी से ये अपने घर चली जाती है, विदर्भ चली जाती है। अब इधर नल जो है जंगल में आगे जा रहे हैं, मतलब उन्हें पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। आगे जाके देखते क्या है कुछ टाइम के बाद, कि एक पार्ट में ना कहीं आग लगा हुआ है, भयानक आग लगा हुआ है जंगल में, और इनको कहीं से आवाज आ रही है कि बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ करके, बचाओ करके। तो आसपास ये देखते हैं, तो देखते हैं क्या है कि हम लोगों का जो अंगूठा है उस साइज का एक छोटा सा सांप है, और वो बचाने के लिए इनसे कह रहा है कि प्लीज मुझे आग से बचाओ। तो अब नल तो थे ही भाई, उनका तो मन यार अच्छा था ही, तो वो तुरंत उनको आग वाले एरिया से हटा के वो दूर में ले आते हैं किनारे में, और उसको बचा लेते हैं। सांप जैसे ही बच जाते हैं, सांप उनसे कहते हैं कि तुम 10 कदम की दूरी पे चले जाओ। नल को समझ में नहीं आता है पहले तो, लेकिन फिर वो मान लेते हैं, 10 कदम की दूरी पे चले जाते हैं। अब वो जैसे ही 10 कदम की दूरी पे जाते हैं, ये जो सांप है जो छोटा सा था वो बड़ा रूप ले लेता है, अपना असली रूप लेके ये नल को डस देता है। और जैसे ही नल को डसता है, नल का पूरा काया पलट, मतलब वो जैसा दिख रहा था उसका उल्टा हो गया। मतलब जहर के पहले अगर वो सबसे खूबसूरत राजा था, तो जहर के बाद वो सबसे बदसूरत इंसान हो गया। उसकी हाइट कम हो जाती है, एकदम कुरूप बदसूरत सा हो जाता है। नल परेशान हो जाता है कि यार मैंने तुम्हें बचाया आग से, तुमने तो मुझे ही डस लिया, मुझे ही जहर दे दिया अपना। तो इस पे जो सांप है वो फिर अपना रियल आइडेंटिटी बताते हैं कि वो कौन है। तो वो बताते हैं कि वो करकोटा सांप है। करकोटा सांप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो जैसे 8 बड़े बड़े प्रजाति के सांप होते हैं, ठीक है, तो करकोटा उसमें से एक सबसे बड़ी प्रजाति है। सबसे बड़ी नहीं, बट इन बड़ी 8 प्रजातियों में से एक है। जैसे तक्षक सांप हो गए, उसी तरीके से ये करकोटा भी है। तो करकोटा उनसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कालीदेव घुसे हुए हैं, जिसके कारण तुम्हारी ये दुर्दशा है और तुम इसी के कारण सफ़र कर रहे हो। तो ये जो जहर है ये कालीदेव को परेशान करेगा और तुम्हें अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैं एक चादर देता हूँ, जब मौका आएगा तुम्हें पता चल जाएगा, तब ये चादर तुम अपने बदन पर लपेटना, इससे तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। ऐसा बोल के उसको फिर गाइड करते हैं कि ये काम करो, यहाँ से तुम सीधे चले जाओ अयोध्या। अयोध्या में ऋतुपूर्ण नाम का एक राजा है, वहाँ पे तुम ऋतुपूर्ण राजा के अंडर में तुम काम करना, ये उसको गाइड कर देता है। अब ये करकोटा से बात सुन के, उनका गाइडेंस लेके ये चले जाते हैं अयोध्या राजा ऋतुपूर्ण के पास। अब राजा ऋतुपूर्ण जो है वो जुए के माहिर इंसान है, मतलब उनको चौपर खेलना एकदम, उनको हराना मुश्किल है, वैसा है। तो ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे, उस राज्य में जाके काम वाम मांगते हैं। अब इनका रूप चेंज हो गया था, कोई पहचानता नहीं था, तो नल ने अपना नया नाम रख लिया था बहुका करके। तो बहुका करके नाम है, और ये जो ऋतुपूर्ण राजा हैं वहाँ के अयोध्या के, ये उनके सारथी बन जाते हैं। ये घोड़ा उड़ा का नॉलेज था, पहले से नहीं पसंद था, तो ये उनका घोड़े का देखभाल करना शुरू कर देते हैं। अभी इधर दमयंती जो है वो बहुत परेशान है, वो अपने पति को हर तरीके से ढूंढ ढूंढ के थक चुकी है। मतलब जितना इनाम है वो लोगों को बोल के कि कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले आओ तो पैसे दिए जाएंगे, इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ करके गुप्तचर भेजते रहती है हर एक राज्य में कि पता करो कोई नया आदमी आया क्या, या फिर कुछ इस कद काठी का है, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी मिले तो इन्फॉर्मेशन लेके आ जाओ। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है, दमयंती को पता चलता है कि एक इंसान है बहुका नाम का, जो अयोध्या में रहता है, और उसके बारे में कहा हुआ था कि वो खाना बहुत अच्छा बनाता है और रथ बहुत अच्छा चलाता है। अब दमयंती को अंदर से लग जाता है कि हो ना हो यही है, मतलब यही उसका पति है। तो कन्फर्म कैसे किया जाए, इसके लिए अब दमयंती जो है ना वो भी बहुत तेज दिमाग वाली लड़की है। वो क्या करती है कि एक सोचती है कि किसी तरीके से इस इंसान को यहाँ पे सामने लाया जाए तो ही मैं पता कर पाऊंगी। तो इसीलिए वो एक झूठा अनाउंसमेंट करा देती है अपने स्वयंवर का, और चारों तरफ इनविटेशन वो भिजवा देती है कि मैं फिर से शादी करना चाहती हूँ, जो भी इंटरेस्टेड हों वो लोग पहुँचें। लेकिन ये टाइम बहुत कम रखती है, मतलब कि एक ही दिन का गैप में ये टाइम रखती है कि बस कल के कल ही शादी करनी है। अब ये जो न्यूज़ है ये बहुका तक भी पहुंचता है। अब बहुका परेशान हो जाता है कि भाई उसके रहते वो शादी करना चाहती है। तो अयोध्या के जो राजा थे उनके पास भी इनविटेशन आता है, क्योंकि उसको तो मेन पता करना था, ऋतुपूर्ण इंटरेस्टेड रहते हैं शादी करने में। तो लेकिन प्रॉब्लम था डिस्टेंस का, कि इतना डिस्टेंस था कि वो एक दिन में कवर नहीं हो सकता था। तो वो बहुका को बुलाते हैं और बहुका से कहते हैं कि मुझे जाना है वहाँ पे शादी में, स्वयंवर का जो इवेंट है उसमें जाना है, तो वहाँ पे मुझे किसी तरीके से पहुँचा दो। अब बहुका जो कि नल है, उसको तो खुद ही जाना है वहाँ पे उस चीज़ को रोकने के लिए या फिर सच्चाई बताने के लिए, तो वो किसी तरीके से, मतलब चलाने में तो माहिर था ही, वो पहुँच जाता है। वो लोग विदर्भ पहुँच जाते हैं अयोध्या से एक रात में, जो कि इम्पॉसिबल था। अब दमयंती जो है ना एक खबरी को अपने पास रखती है, जो बहू का किससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन देता था कि सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला बहू का ही है। अब ये सब चीज़ जो है वो धीरे धीरे उसको और कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यही उसका पति है। तो वो लोग पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद दमयंती जाती है मिलने के लिए, लेकिन वो सामने से जब देखती है तो उसको मतलब सामने से तो विश्वास होता ही नहीं है, क्योंकि इतना नहीं बदल सकता है कोई भी इंसान। जिस तरीके से ये बहू का बन चुका था, हाइट कम हो चुका था, कुरूप हो चुका था, इसको लगा था कि थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, जैसे बाल बढ़ के जाएंगे या फिर दाढ़ी बढ़ चुकी होगी, शरीर पतला हो चुका होगा, बट ये तो इंसान ही अलग है। तो फिर भी उसके अंदर से लग रहा था कि हो ना हो यही है। तो वो क्या करती है कि जाती है बहुका के सामने, और बहुका को वो फिर से उसी तरीके से पहचानने का कोशिश करती है उसका आँख देख के, जिस तरह से वो स्वयंवर में की थी। अब उसको सेम फीलिंग दिख जाता है बहुका की आँख में। अब ये चीज़ बाहर चल रही है कि बाहर में देख रहे हैं, अंदर में कालीदेव जो हैं वो अंदर में बॉडी में है इसके नल के। अब उनको ये डर लग जाता है कि वो भी किसी एक भले इंसान या फिर जो धर्म प्रॉपरली निभा रहा है उसके अगेंस्ट में ये बहुत ज़्यादा देर तक गलत उसको नहीं रख सकते हैं, है ना, उसको टॉर्चर ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं, और इसका उल्टा भी परिणाम हो सकता है, मतलब उनको भी पनिशमेंट मिल सकता है। तो इसी डर से कि वापस इन पर चीज़ें ना आ जाए, वो बहुका के बॉडी से निकल जाते हैं, मतलब उनके मुंह के थ्रू निकलते हैं। हम लोग देखें कई सारा हॉरर मूवी में देखते हैं कि अगर किसी का दिखाता है कि अगर कुछ एविल चीज़ बॉडी से निकलता है तो मुंह के थ्रू निकलता है, तो वो मुंह से निकल जाता है। अब नल जो है बहुका जो है उसको पता चल जाता है कि ये सही टाइम है, क्योंकि उनको डिफरेंस पता चलता है कि इसके दिमाग से जैसे निकल जाता है, तब इनको रियलाइज़ होता है कि उन पर हावी था ये, और वो उसी तुरंत अपना चादर ओढ़ लेते हैं। जैसे चादर ओढ़ते हैं वो अपना रियल फॉर्म में आ जाते हैं। अब जो भी लोग थे जिन्हें पता नहीं था कि बहू का नल है, उसके रूप में आने के बाद सबको पता चल जाता है कि नल है और ये दमयंती है, और इनकी शादी इतनी बड़ी शादी थी कि सबको पता था। तो राजा ऋतुपर्ण भी जो थे उनको भी पता था, तो वो बधाई देते हैं कि चलो मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरे अंडर में आए कुछ दिन रूप बदल के, बट मुझे आपसे रथ चलाना सीखना है। तो ऋतुपर्ण उसके कहते हैं कि रथ चलाना सीखना है, और नल जो है कहते हैं कि मुझे आपसे चौपर खेलना सीखना है, मतलब जुआ खेलना सीखना है। तो कुछ टेक्स्ट में ऐसा कहा गया है कि जब ये इनके लिए रथ चलाते थे उसी टाइम पे भी ये सिखाते थे उनको, दोनों में ये एक्सचेंज होता था इन्फॉर्मेशन कि वो उसको सिखा रहे हैं चौपर खेलना, वो उसको घोड़ा चलाना सीख रहे हैं। कुछ टेक्स्ट में ऐसा लिखा गया है और कुछ टेक्स्ट में ऐसा है कि जब वो अपने रूप में आ जाते हैं उसके बाद वो बोलते हैं सिखाने के लिए। तो खैर जो भी हो, ये अपने रूप में आ चुके हैं नल, अपनी बीवी से मिल चुके हैं और ये अब चौपर में माहिर हो चुके हैं ऋतुपर्ण के हेल्प से। ये वापस अपना राजपाट लेने के लिए अपने भाई के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि या तो तुम मेरे से वन ऑन वन फाइट करो, ठीक है, जो जीतेगा देख वही बचेगा, या फिर एक और हम लोग चौपर या जुआ खेलते हैं और उसमें सब कुछ दाव पे लगा रहेगा तुम्हारे तरफ से। अब उसका भाई तो अधर्मी था ही, तो उसके दिमाग तो भ्रष्ट था ही पहले से, उसको लगा कि यार लड़ाई वड़ाई तो खैर छोड़ो, जाने दो, एक बार हरा चुका हूँ इसको, फिर से हरा दूंगा। अब बोलता है कि ठीक है चलो चौपर खेलेंगे। वो आता है। अब ये जितना सीखा हुआ था जो नल है वो जितना सीख के आया था, ये उसके हेल्प से ये जीत जाता है, और जीतने के बाद इसके भाई का भी जितना हिस्सा था वो भी इसके पास आ जाता है। सब कुछ वापस अपना जितना भी है राजपाट वाजपाट सब ले लेता है, लेकिन ये अपने भाई के साथ कुछ गलत नहीं करता है, ना तो बदला लेता है ना तो कुछ ऐसा कुछ उसको पनिशमेंट देता है, बदले में उसको चूँकि भाई है तो उसको आधा हिस्सा दे देता है राज करने के लिए। तो दोस्तों ये कहानी थी नल और दमयंती के बारे में, जो बेसिकली जो महर्षि हैं वो युधिष्ठिर को समझा रहे हैं सुना रहे हैं कि तुम ही अकेले ऐसे नहीं हो जो सफ़र कर रहा है या फिर गिल्ट से जा रहा है, लेकिन जो भी हुआ हो चुका है, अब एक रात आती है तो फिर सुबह भी होता है। तो उनको मोरली थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए वो एक कहानी सुनाते हैं। अब दोस्तों ये जो नल दमयंती की जो कहानी है ना, ये आप लोगों को बहुत सारे वर्जन्स में मिलेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कहते हैं कि अकबर जो थे, अकबर के दरबार में जो फिनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम है तोडरमल, उन्होंने भी एक पोयम लिखा है इस लव स्टोरी पे। इसके अलावा बहुत सारे बाहर के देश के जितने भी पोयम राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो नल और दमयंती की जो लव स्टोरी है, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। एक इंटरप्रिटेशन लव स्टोरी का है, एक इंटरप्रिटेशन भक्ति से रिलेटेड है, एक इंटरप्रिटेशन आपका सूफीज्म से भी है। तो अगर कभी आप लोगों को मौका मिले कुछ इनके वर्जन्स पढ़ने के, तो थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमेशा की तरह कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेरा मकसद आप लोगों तक कुछ अनसुने और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुँचाए हुए। दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ कुछ सुनाओ यार के इंस्टाग्राम पेज पे या यूट्यूब चैनल पे मुझे लिख के भेजें। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार, ओनली विथ अमित रवानी। Thank you.